हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे की अनशन की। तो अन्ना हजारे जी, हम सभी को पता है वो देश के जाने माने समाज सेवक है, जिन्होंने 2011 में और 2012 में एंटी करप्शन के लिए अनशन किया था। और उस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था और उसमें से ही चलकर आगे केजरीवाल जी नेता बने और दिल्ली के वो मुख्यमंत्री है आज भी। तो अन्ना हजारे जी को जो 2011 में सपोर्ट मिला था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। पूरा मुंबई उनके पीछे खड़ा था, दिल्ली वहाँ उनके पीछे खड़ा था और बाकी शहरों से भी लोगों ने उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम पे करप्शन बहुत हो चुका था और लोग परेशान थे। कांग्रेस का एक के बाद एक स्कैम बाहर आ रहा था, 2G घोटाला और बाकी के ऐसे बहुत सारे घोटाले थे जिनके कारण पहले ही लोग परेशान थे। और करप्शन के अगेंस्ट सभी लोगों ने फिर अन्ना हजारे की साथ दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जन लोकपाल बिल का सरकार ने वादा कर दिया और उसका उन्होंने सिर्फ लोकपाल बिल 3 दिन में पास कर दिया। बट जो अन्ना हजारे जी को और इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों को चाहिए था, उस तरीके का वो बिल नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट तरीके का बिल उन्होंने बनाया था और उसी के कारण अन्ना हजारे को ऐसा लगा कि सरकार ने उन्हें ठग लिया। लेकिन तब तक सरकार बदल गई और नरेंद्र मोदी सरकार में आए। मोदी सरकार आने के बाद उनको ऐसी आशा थी कि हो सकता है कि यहाँ ये सरकार है वो जन लोकपाल लाएगी। और देखा जाए तो इस सरकार में पहले से करप्शन भी काफ़ी कम था, तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे जी को फिर से जन लोकपाल आंदोलन करने का कोई ज़रूरत था। बट लेकिन जैसे हम सबको जानते हैं कि उन्होंने जो अनशन है उसका इस्तेमाल काफ़ी बार किया है, जिसके वजह से उसका जो इम्पोर्टेंस है वही कम हो गया है। आज का दिन ऐसा है कि उनका एज पहले से ज़्यादा हो चुका है। आप सबको पता होगा कि अन्ना हजारे 2 बार 3 बार लाइफ में पहले भी बच चुके हैं। जब इंडो पाक का जो वॉर था उस समय वो ट्रक ड्राइवर थे और जो शेलिंग हो रही थी, हेवी शेलिंग हो रही थी और गोलीबार हो रहा था, उसमें से भी उन्होंने ट्रक निकाला था और वो मिरेक्युलसली तभी बच गए थे। और बाद में नागालैंड में जब नागा ट्राइब ने उन हल्ला कर दिया था आर्मी के जवानों पे, उस टाइम पे वो नेचर्स कॉल के लिए गए थे, तब इसलिए जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है आर्मी को और लोगों की जाने गई है, जवान वहाँ पे मर चुके हैं, और उस टाइम पे भी वो बचे थे। तो 2-3 बार बचने के बाद उनको लाइफ में ऐसे लगा कि मेरा पूरा का पूरा जो लाइफ है ये शायद कुछ बड़ा करने के लिए है, और उन्होंने उसके बाद अपने आप को सोशल सर्विस में झोंक दिया। वो जब रिटायर हुए 1975 में, तो उनको जो भी ग्रेचुटी का पैसा वगैरह मिला उससे उन्होंने फिर जो उनका गांव है राड़ेगंज सिद्धि अहमदनगर में पड़ता है उसका डेवलपमेंट में वो पैसा लगा दिया। उन्होंने वहाँ पे जो बैरन लैंड था उसको फर्टाइल बनाने के लिए वाटर शेड का प्रोग्राम चलाया। जो वहाँ के लिकर शॉप्स थे उनको बंद कर दिया। लगभग 30 ब्रिवरीज को उन्होंने बंद किया जो इल्लीगल तरीके से चलती थी। और जो यूथ है वहाँ पे उसको उन्होंने काफ़ी एक यूनाइटेड किया। और ये सारा किया एक मंदिर में से, मंदिर को फोकल पॉइंट बना के, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सादी उसके बाद रहन सहन की उन्होंने ज़िंदगी जी है, बहुत ही सादगी भरी ज़िंदगी जी है। उनका जो इंस्पिरेशन है वो आप सभी को पता है, वो स्वामी विवेकानंद जी है, महात्मा गांधी जी है और विनोबा भावे जी है। तो ऐसे गांधीवादी समाज सुधारक देश को बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी चाहते हैं कि वो अच्छे से रहे और उनका हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि देश को उनकी ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही समय था जन लोकपाल के लिए। और अगर जन लोकपाल भी करना था, आंदोलन भी करना था, तो अनशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अनशन का जो शस्त्र है वो गांधी जी बहुत चालाकी से यूज़ करते थे। गांधी जी जो थे वो हार्ड निगोशिएटर थे, उनको ये पता था कि वॉयलेंस से बेटर अहिंसा होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम बातचीत कर कर के सुलझा सकते हैं उसके लिए शस्त्र उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसीलिए जो निगोशिएशन स्किल था उनका, उस पे उनको ज़्यादा भरोसा था। और उसके अलावा उन्होंने बाकी के जो सप्लीमेंट्री जो वेपन्स यूज़ किए थे वो था नॉन कोऑपरेशन का। तो जो गांधी जी थे उनके जो अनुयायी है, उन्होंने अपने अपने टाइम पे, फिर वो नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो या विनोबा भावे हो, उन्होंने अपने अपने टाइम पे जो गांधी जी के जो वेपन्स है, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह, इनका बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और मैं समझता हूँ कि 2011-12 में जो अन्ना हजारे ने किया वो भी काफ़ी कमेंडेबल था, लेकिन इस बार जो चल रहा है, जो 2019 में चल रहा है, जो उन्होंने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन से अनशन शुरू किया है, उसमें मेरे ख्याल से तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर सरकार ने वो कुछ इलेक्शन के लिए कुछ सपोज़ अगर कोई वादा कर भी दिया तो भी मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होगा, क्योंकि जो अन्ना हजारे का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिंजेंट लॉ का है। आप सभी को पता होगा कि वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं। पहले भी करप्ट लोगों को फांसी दो तक ऐसा वो डिमांड करते हैं, और जब वो दारूबंदी का काम करते थे तभी वो जो बेवड़े लोग हैं उनको पेड़ से बांधकर अपने आर्मी बेल्ट से भी मारा करते थे। तो इस तरीके के उनके एक्सट्रीम ख्यालात है। तो किसी भी तरीके से ये तो गांधी जी का रास्ता नहीं है, और अगर वो जन लोकपाल भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार और पुरानी सरकार उसमें काफ़ी फ़र्क है। कम से कम जो करप्शन के आंकड़े हैं उस पे से सब तो पता चलता है, क्योंकि जो UPA 2 थी उसमें एक के बाद एक काफ़ी सारे करप्शन और स्कैम्स बाहर निकलते थे। कम से कम लास्ट 4-5 साल में हमने वो होते हुए नहीं देखा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सेंसिबल स्टेप उठाना ज़रूरी था। आज का जो मैं बुलेटिन देख रहा था उनके हेल्थ के बारे में, उस पे से एक पता चल रहा था कि पहले जैसा उनका बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका BP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और वेट भी बहुत जल्दी लूज़ कर रहे हैं। तो 10 साल पुरानी बात, 2011 की बात और आज की बात, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये उनको भी समझना चाहिए कि वो पहले जैसे 9 दिन, 12 दिन, 13 दिन अनशन कर सकते थे, वैसे इस बार नहीं कर पाएंगे। उनको 3-4 दिन भी अनशन करना उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अन्ना जी अपना अनशन रोक दे, या सरकार जल्द से जल्द उनसे मिलके उनको उनका अनशन रोकने को मजबूर कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, और जो भी है वो बातचीत करके निपटा ले, क्योंकि हम सभी को अन्ना जी के हेल्थ के बारे में काफ़ी चिंता है, क्योंकि हम सभी अन्ना जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो मतलब हेल्दी रहे और खुश रहे। ओके गाइस, सो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट अन्ना हजारे जी पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट को, और सुनते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पॉलिटिकल टॉपिक्स पे और सोशल टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेके आते रहूँगा। सो गाइस, गुड नाइट।
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक डोडामनी और आप सुन रहे हो मेरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे की अनशन की। तो अन्ना हजारे जी, हम सभी को पता है, वो देश के जाने माने समाज सेवक है जिन्होंने 2011 में और 2012 में एंटी करप्शन के लिए अनशन किया था और उस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था और उसमें से ही चलकर आगे केजरीवाल जी नेता बने और दिल्ली के वो मुख्यमंत्री है आज भी। तो अन्ना हजारे जी को जो 2011 में सपोर्ट मिला था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। पूरा मुंबई उनके पीछे खड़ा था, दिल्ली वहाँ उनके पीछे खड़ा था और बाकी शहरों से भी लोगों ने उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम पे करप्शन बहुत हो चुका था और लोग परेशान थे। कांग्रेस का एक के बाद एक स्कैम बाहर आ रहा था, 2G घोटाला और बाकी के ऐसे बहुत सारे घोटाले थे जिनके कारण पहले ही लोग परेशान थे और करप्शन के अगेंस्ट सभी लोगों ने फिर अन्ना हजारे की साथ दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जनलोकपाल बिल का सरकार ने वादा कर दिया और उन्होंने सिर्फ लोकपाल बिल 3 दिन में पास कर दिया, बट जो अन्ना हजारे जी को और इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों को चाहिए था उस तरीके का वो बिल नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट तरीके का बिल उन्होंने बनाया था और उसी के कारण अन्ना हजारे को ऐसा लगा कि सरकार ने उन्हें ठग लिया। लेकिन तब तक सरकार बदल गई और नरेंद्र मोदी सरकार में आए। मोदी सरकार आने के बाद उनको ऐसी आशा थी कि हो सकता है कि यहाँ ये सरकार है वो जन लोकपाल लाएगी, और देखा जाए तो इस सरकार में पहले से करप्शन भी काफ़ी कम था। तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे जी को फिर से जन लोकपाल आंदोलन करने का कोई ज़रूरत था, बट लेकिन जैसे हम सबको जानते हैं कि उन्होंने जो अनशन है उसका इस्तेमाल काफ़ी बार किया है, जिसके वजह से उसका जो इम्पोर्टेंस है वही कम हो गया है। आज का दिन ऐसा है कि उनका एज पहले से ज़्यादा हो चुका है। आप सबको पता होगा कि अन्ना हजारे 2-3 बार लाइफ में पहले भी बच चुके हैं, जब इंडो पाक का जो वॉर था उस समय वो ट्रक ड्राइवर थे और जो शेलिंग हो रही थी, हेवी शेलिंग हो रही थी और गोलीबार हो रहा था, उसमें से भी उन्होंने ट्रक निकाला था और वो मिरेक्युलसली तभी बच गए थे। और बाद में नागालैंड में जब नागा ट्राइब ने उन हल्ला कर दिया था आर्मी के जवानों पे, उस टाइम पे वो नेचर्स कॉल के लिए गए थे, तब इसलिए जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है आर्मी को और लोगों की जाने गई है, जवान वहाँ पे मर चुके हैं, और उस टाइम पे भी वो बचे थे। तो 2-3 बार बचने के बाद उनको लाइफ में ऐसे लगा कि मेरा पूरा का पूरा जो लाइफ है ये शायद कुछ बड़ा करने के लिए है, और उन्होंने उसके बाद अपने आप को सोशल सर्विस में झोंक दिया। वो जब रिटायर हुए 1975 में, तो उनको जो भी ग्रेचुटी का पैसा वगैरह मिला उससे उन्होंने फिर जो उनका गांव है राड़ेगंज सिद्धी अहमदनगर में पड़ता है उसका डेवलपमेंट में वो पैसा लगा दिया। उन्होंने वहाँ पे जो बैरन लैंड था उसको फर्टाइल बनाने के लिए वाटर शेड का प्रोग्राम चलाया, जो वहाँ के लिकर शॉप्स थे उनको बंद कर दिया। लगभग 30 ब्रिवरीज को उन्होंने बंद किया जो इल्लीगल तरीके से चलती थी, और जो यूथ है वहाँ पे उसको उन्होंने काफ़ी एक यूनाइटेड किया, और ये सारा किया एक मंदिर में से, मंदिर को फोकल पॉइंट बना के, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सादी उसके बाद रहन सहन की उन्होंने ज़िंदगी जी है, बहुत ही सादी भरी ज़िंदगी जी है। उनका जो इंस्पिरेशन है वो आप सभी को पता है, वो स्वामी विवेकानंद जी है, महात्मा गांधी जी है और विनोबा भावे जी है। तो ऐसे गांधीवादी समाज सुधारक देश को बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी चाहते हैं कि वो
अच्छे से रहे और उनका हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि देश को उनकी ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही समय था जन लोकपाल के लिए, और अगर जन लोकपाल भी करना था, आंदोलन भी करना था, तो अनशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अनशन का जो शस्त्र है वो गांधी जी बहुत चालाकी से यूज़ करते थे। गांधी जी जो थे वो हार्ड निगोशिएटर थे, उनको ये पता था कि वॉयलेंस से बेटर अहिंसा होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम बातचीत कर करके सुलझा सकते हैं उसके लिए शस्त्र उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसीलिए जो निगोशिएशन स्किल था उनका, उस पे उनको ज़्यादा भरोसा था। और उसके अलावा उन्होंने बाकी के जो सप्लीमेंट्री जो वेपन्स यूज़ किए थे वो था नॉन कोऑपरेशन का। तो जो गांधी जी थे उनके जो अनुयायी है, उन्होंने अपने अपने टाइम पे, फिर वो नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो या विनोबा भावे हो, उन्होंने अपने अपने टाइम पे जो गांधी जी के जो वेपन्स है, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह, इनका बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और मैं समझता हूँ कि 2011-12 में जो अन्ना हजारे ने किया वो भी काफ़ी कमेंडेबल था, लेकिन इस बार जो चल रहा है, जो 2019 में चल रहा है, जो उन्होंने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन से अनशन शुरू किया है, उसमें मेरे ख्याल से तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर सरकार ने वो कुछ इलेक्शन के लिए कुछ सपोज़ अगर कोई वादा कर भी दिया तो भी मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होगा, क्योंकि जो अन्ना हजारे का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिंजेंट लॉ का है। आप सभी को पता होगा कि वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं, पहले भी करप्ट लोगों को फांसी दो तक ऐसा वो डिमांड करते हैं। और जब वो दारूबंदी का काम करते थे तभी वो जो बेवड़े लोग हैं उनको पेड़ से बांधकर अपने आर्मी बेल्ट से भी मारा करते थे। तो इस तरीके के उनके एक्सट्रीम ख्यालात है, तो किसी भी तरीके से ये तो गांधी जी का रास्ता नहीं है। और अगर वो जन लोकपाल भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार और पुरानी सरकार उसमें काफ़ी फ़र्क है। कम से कम जो करप्शन के आंकड़े हैं उस पे से सब तो पता चलता है, क्योंकि जो UPA 2 थी उसमें एक के बाद एक काफ़ी सारे करप्शन और स्कैम्स बाहर निकलते थे। कम से कम लास्ट 4-5 साल में हमने वो होते हुए नहीं देखा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सेंसिबल स्टेप उठाना ज़रूरी था। आज का जो मैं बुलेटिन देख रहा था उनके हेल्थ के बारे में, उस पे से एक पता चल रहा था कि पहले जैसा उनका बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका BP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और वेट भी बहुत जल्दी लूज़ कर रहे हैं। तो 10 साल पुरानी बात, 2011 की बात और आज की बात, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये उनको भी समझना चाहिए कि वो पहले जैसे 9 दिन 12 दिन 13 दिन अनशन कर सकते थे, वैसे इस बार नहीं कर पाएंगे। उनको 3-4 दिन भी अनशन करना उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अन्ना जी अपना अनशन रोक दे, या सरकार जल्द से जल्द उनसे मिल के उनको उनका अनशन रोकने को मजबूर कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, और जो भी है वो बातचीत करके निपटा ले, क्योंकि हम सभी को अन्ना जी के हेल्थ के बारे में काफ़ी चिंता है, क्योंकि हम सभी अन्ना जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो मतलब हेल्दी रहे और खुश रहे। ओके गाइस, सो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट अन्ना हजारे जी पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट को, और सुनते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पॉलिटिकल टॉपिक्स पे और सोशल टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेके आते रहूँगा। सो गाइस, गुड नाइट।